मत करो। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वन जा, यमुना तीर वन जा, जय राधा माधव कुंज बिहार, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वन यमुना तीर वन जारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare राम 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 हरे हरे। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि। राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय राधे। राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि पाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंध 9 अध्याय 19 श्लोक क्रमांक 24। आसेवितं वर्ष पूगा आसेवितं वर्ष पूगा षड्वर्गं विषयेषु सह क्षणेन मुमुचे नीडम् जातपक्ष इव द्विजः आसेवितं वर्ष पूगा षड्वर्गं विषयेषु सह क्षणेन मुमुचे नीयम् जातपक्ष इव द्विजः आसेवितं वर्ष पूगा षड्वर्गं विषयेषु सह क्षणेन मुमुचे नीडम् जातपक्ष इव द्विजः। बहुत सुंदर श्लोक है, इसे प्रेम से उच्चारण कीजिए। आसेवितं वर्ष पूगान् षड्वर्गं विषयेषु सह क्षणेन मुमुचे नीडम् जातपक्ष इव द्विजः आसेवितं वर्ष पूगान् षड्वर्गं विषयेषु सह क्षणेन मुचे नीरम् जातपक्ष इव द्विजः आसेवितं वर्ष पूगान् षड्वर्गं विषयेषु सह क्षणेन मुमुचे नीडम् आतपक्ष प्रारंभ करते हैं। आसेवितम् तदेव संलग्न रहकर वर्ष पुगान अनेकानेक वर्षों तक षट वर्गम मन समेत छह इंद्रियों को विषयशो इंद्रिय भोग में राजा ययाति ने क्षणेन एक ही क्षण के भीतर मुमुचे छोड़ दिया नीडम घोंसला जात पक्ष पंख उग आए हैं जिसके इव सदृश द्विज पक्षी अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद ऐसी भक्ति विधान स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार से हैं। हे राजा परीक्षित, ययाति ने अनेकानेक वर्षों तक विषय वासनाओं का भोग लिया क्योंकि वे इसके आदि थे, किंतु उन्होंने एक क्षण के भीतर अपना सर्वस्व त्याग दिया। जिस तरह पंख उग जाने पर पक्षी अपने घोंसले से उड़ जाता है, तात्पर्य इस प्रकार से है। महाराज ययाति बद्ध जीवन के बंधन से तुरंत मुक्त हो गए, यह सचमुच आश्चर्यजनक है। लेकिन यहाँ पर जो दृष्टांत दिया गया है वह उपयुक्त है। एक छोटे से पक्षी का बच्चा जो खाने पीने के लिए भी अपने माता पिता पर निर्भर रहता है, पंख उगते ही सहसा घोंसले से उड़ जाता है। इसी प्रकार यदि कोई पूर्णतया भगवान के शरणागत हो जाता है तो वह तुरंत भवबंधन से मुक्त हो जाता है, जैसा कि स्वयं भगवान ने वचन दिया है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि। श्रीमद् भागवतम में दूसरे स्कंद चौथे अध्याय और 18वें श्लोक में कहा गया है, किरात हुणांग्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना सखादय एनियेच पापा यदपाशयाशया शुद्धयन्ति तस्मे प्रभविष्णवे नमः। किरात हुण अंग्र पुलिंद पुलकश आभीर शुंभ यवन तथा खस, ये समस्त जातियां सभी पाप कर्मों में लिप्त रहने वाले अन्य लोग भी भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करने पर शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि भगवान सर्वोच्च शक्तिशाली हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूं। भगवान विष्णु इतने शक्तिशाली हैं कि यदि वे चाहे तो किसी का भी तुरंत उद्धार कर सकते हैं, और भगवान विष्णु या कृष्ण को तुरंत प्रसन्न किया जा सकता है यदि हम ययाति महाराज की भांति भगवान के आदेश को मानकर उनकी शरण ग्रहण कर ले। महाराज ययाति वासुदेव कृष्ण की सेवा करना चाहते थे, अतएव जो ही उन्होंने गृहस्थ जीवन से विरक्त होना चाहा, जो ही वासुदेव ने उनकी सहायता की। अतएव भगवान के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करते हुए हमें अत्यंत निष्ठावान होना चाहिए, तब हम बद्ध जीवन के सारे बंधन से तुरंत सकते हैं। अगले श्लोक में इसकी स्पष्ट व्याख्या की गई है। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष प्रदेश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्थो महान श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो न पर। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रतिदिवसीय भागवत सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम सौभाग्य हैं करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु गिरिराज गोवर्धन धारी श्री राधा गिरधारी जी के चरण कमलों में बैठकर उन्हीं की कथा उन्हीं के गुणगान करने का यह बहुत सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। जीवन के क्षण जीवन का समय प्रायः सांसारिक बातों में बीत रहा है, परंतु श्री प्रभुपाद जी की कृपा है इन बहे हुए समय में कुछ क्षण भगवत कथा श्रवण एवं भगवत कथा का स्मरण करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। श्री प्रभुपाद जी की कृपा से हम सब भक्तों को यह दिव्य शुद्ध परंपरा प्राप्त हुई है जिसे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहते हैं। साक्षात भगवान श्री कृष्ण से ही जो ज्ञान चला आ रहा है, वही ज्ञान श्री प्रभुपाद जी की कृपा से आज हम सबको प्राप्त हुआ है। और वैसे तो इस संसार में अनेकों धर्म है, अनेकों संप्रदाय है, अनेकों मत है, परंतु चैतन्य महाप्रभु का क्या मत है? श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस मत को प्रस्तुत करते हैं। पद्यावली में रूप गोस्वामी इस श्लोक को कोट करते हैं। चक्रवर्ती पाद कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु का जो मत है उसी मत को मैं आदर करता हूं। तत्र आदर, तत्र महाप्रभु के मत को ही आदर कर रहा हूं, न पर अन्य जितने भी मत हैं उनके प्रति मेरा आदर नहीं है। प्रणाम है, सत्कार है, परंतु आदर तो एकमात्र चैतन्य महाप्रभु के मत को ही दिया गया है। तो पूछा जाए चैतन्य महाप्रभु का मत क्या है, क्योंकि हमारा मत तो गलत हो सकता है। गुजरात में अभी वर्तमान में मतदान हो रहा है, आप टीवी में समाचार में, मैं कल ही देख रहा था, वोटिंग चल रहा है। हम लोग मत करते हैं, मत देते हैं मतदान, है ना, परंतु हमारा मतदान कितना स्पष्ट है और कितना ठीक है ये तो हम लोग ही जानते हैं, है ना। हम लोग मत देते हैं यह सोच करके आने वाले जो राजा हैं वो तेल के भाव कम कर देंगे, पेट्रोल सस्ता कर देंगे, भोजन सब्जी इत्यादि में हमें आसानी हो जाएगी। परंतु कितना भी दिमाग लगाकर यदि हम मत देते हैं आखिर तो वो मत गलत ही हो जाता है, है ना। मत के पहले राजा नेता लोग इस प्रकार से खड़े होते हैं, आप मुझे मत दीजिए, वोटिंग कीजिए। कार्टून में मैंने देखा था, न्यूज़पेपर में जो कार्टून आता है ना, मतदान के पहले नेताओं का फोटो ऐसे होता है और मतदान के बाद ऐसे होता है। मतदान के पहले कहते हैं आप मुझे जिता दीजिए, आपकी सभी इच्छा पूर्ण करूंगा, और जीत जाने के बाद टाटा बाय बाय, आप कौन मैं कौन। तो भक्तों मत की बात हो रही है, हमारी बुद्धि से यदि हम मत देंगे भी तो वो पूर्ण और शुद्ध नहीं होगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का क्या मत है शास्त्र में बताया गया है। सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु को पूछा गया कि बताइए जगत में आराध्य भक्ति करने लायक वस्तु क्या है, आराधना करने लायक कौन सी वस्तु है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दो चीज है, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, आराधना करने लायक एकमात्र तत्व और वो है ब्रजेश तनय, ब्रज के जो ईश है, ब्रज के जो राजा है नंद बाबा, उस नंद बाबा के पुत्र कृष्ण ही भक्ति करने लायक तत्व है, अन्यथा और कोई नहीं। कितनी सुंदर बात, चैतन्य महाप्रभु का मत देखिए। आचार्य एक ग्रंथ लिखा चैतन्य मत, और इसी सिद्धांत के आधारित ब्रजेश तनय, एक शब्द से महाप्रभु ने अनेकों सिद्धांत दे दिए। मैं जिस, मेरा जो मत है, जिस भगवान की आराधना करो वो भगवान कोई निराकार नहीं है, और इसीलिए सीधा कृष्ण का नाम नहीं लिया, ब्रजेश तनय, ब्रज के ईश, ब्रज के राजा नंद बाबा के पुत्र जो है उस कृष्ण की आराधना करनी चाहिए, अर्थात भगवान के द्विभुज साकार स्वरूप की आराधना, और वो भी ब्रजेश तनय, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर सर्वोपरि सर्व अवतारी भगवान से कृष्ण ही आराधना करने लायक है।
और दूसरी चीज कहते हैं तद धाम वृंदावन, आराधना करने लायक दो चीज, एक तो भगवान और दूसरा भगवान जिस स्थान में रहते हैं उस वृंदावन का। तो इस प्रकार ये महाप्रभु का मत है। और आगे महाप्रभु को पूछा जाए, ठीक है भगवान की आराधना करनी चाहिए, लेकिन कृष्ण की आराधना अनेकों भावों में होती है। तो कृष्ण की भक्ति करने के लिए उच्च भाव कौन सा है, सबसे श्रेष्ठ भाव, सबसे टॉप क्लास की चीज क्या है? तब चैतन्य महाप्रभु अपना मत देते हैं और चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, कहते हैं चैतन्य महाप्रभु को जब पूछा गया कि कृष्ण की भक्ति करते हुए सबसे श्रेष्ठ भाव कौन सा है, तब कहते हैं रम्या काचिद उपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। ब्रज की वनाओं ने, ब्रज में रहने वाली गोपियों ने जिस भाव से भगवान कृष्ण की प्राप्ति की, ब्रज में रहने वाली गोपियों ने जिस भाव में भगवान को पूजा, जिस भाव में कृष्ण की भक्ति की, उस भाव में भक्ति करना ये सबसे बड़ी आराधना है। सबसे बड़ी क्या भाव है गोपियों का, हम प्रतिदिन शिक्षा सकम में गाते हैं, चैतन्य महाप्रभु भी उसी राधा रानी के भाव में गंभीरा में कहते हैं कि हे कृष्ण यदि गाढ़ आलिंगन देकर आपको मुझे सुखी करना है, या यदि लंपट बनकर किसी अन्य गोपियों के साथ तुम्हें रमण करना है और मुझे दुखी करना है, आलिंगन देकर सुखी करो या मुझे तड़पा तड़पा कर दुखी करो, लेकिन मेरा तो एक ही मानना है, चाहे आप मुझे सुख दो चाहे आप मुझे दुख दो, मैं तो जन्म जन्मांतर तक आपका ही बनकर रहूंगा। बस हृदय में यही भाव है, ये भाव गोपियों का भाव। ये तो हम लोग दो पांच महीने से भक्ति करते हैं और धंधा मंदा हो गया, अब छोड़ो भक्ति क्या करना, भक्ति करने से कुछ मिलता नहीं। तो पांच महीने से दो पांच साल से भक्ति करते हैं, जीवन में दुख आ गया, बोले इतनी भक्ति करने पर भी दुख मिलते हैं, भक्ति करने का क्या फायदा। कुछ लोग ये सोचकर भक्ति छोड़ देते हैं, तो कुछ लोग भक्ति करते हैं मैं सुखी हो जाऊंगा सुखी होने के लिए, तो कुछ लोग भक्ति करते हैं नरक में जाने से बचने के लिए, लेकिन गोपियां भक्ति करती हैं एकमात्र कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। सबसे श्रेष्ठ भाव जिसे शास्त्र की भाषा में तत् सुख सुखित्व भाव कहा जाता है, एकमात्र कृष्ण को सुखी करने के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और कृष्ण को सुखी करने के लिए यदि मुझे दुखी होना पड़े या करोड़ों करोड़ों जन्म तक नरक में भी भले जाना पड़े तैयार, लेकिन हमारे कृष्ण सुखी होने चाहिए। प्रसिद्ध घटना आप जानते हैं, कृष्ण को द्वारिका में बुखार आया और बहुत इलाज किया ठीक नहीं हुआ, नारद मुनि आए खबर लेने के लिए, बोले प्रभु आपको इतना बुखार, बोले तुरंत ठीक हो सकता है यदि मेरा भक्त अपने चरण की रज मेरे मस्तक पर लगा दे। तो नारद जी ने कहा 16108 भक्त तो आपके घर पर ही हैं, 16108 मेडिकल आपके घर पर है, तुरंत दवाई लेकर आता हूं और लगा देता हूं। नारद मुनि गए, कृष्ण की पत्नी रुक्मणी सत्यभामा जामवती सभी पत्नियों के पास एक के बाद एक, लेकिन सभी पत्नियों ने कहा नारद मुनि हमारे चरण की रज भगवान कृष्ण के मस्तक पर लगाओगे, क्या आपको हमें नरक में भेजना है, क्या हमारे तुच्छ चरण की रज कृष्ण के ऊपर लगाकर हमें नरक में जाना है, हम लोग हमारे चरण की रज नहीं देंगे। सभी पत्नियों ने टके से जवाब दे दिया, नारद जी वापस आए निराश हो गए। तब कृष्ण ने कहा नारद अब एक काम करो, गोकुल में जाकर देखो शायद वहां से रज मिल जाए। नारद मुनि ब्रज वृंदावन गोकुल में आए और गोपियों को पता चला नारद जी द्वारिका से आ रहे हैं, सारी गोपियां नारद जी के पास आई, बताइए नारद जी हमारे कृष्ण की स्थिति में। नारद जी ने कहा आपके कृष्ण वर्तमान बीमार है। सभी गोपियां रोने लगी, बोले इसका इलाज, बोले इलाज आपके पास ही है, क्या इलाज है, बोले यदि गोपियों आपके चरण की रज मुझे दे दो और मैं वहां जाकर कृष्ण के मस्तक पर लगा दूं तो वह तुरंत ठीक हो सकते हैं। गोपियों ने कहा इतनी सी बात, गोपियां नाचने लगी और नाचते नाचते अपने चरण की रज गोनी भर भर के देने लगी, आप मेरी रज लेकर जाओ, आप मेरी रज। नारद जी ने कहा देखो आपके चरण की रज भगवान के ऊपर लगेगी, आपको नरक में जाना पड़ेगा, शास्त्र प्रमाण है भक्तों। उस समय गोपियों ने इतना ही कहा, नारद जी एक नहीं करोड़ों करोड़ों बार नरक में जाने के लिए तैयार है, लेकिन कृष्ण का दुख हम नहीं देख सकती हैं, आप जाओ कृष्ण को सुखी करो, हम नरक में जाने के तैयार हैं। यह है गोपियों का भाव। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं है? वन्या का चिदुपासना ब्रज वधु वर्गेण या कल्पिता, ब्रज वनिताओं ने जिस भाव में भगवान की भक्ति की, कृपा है चैतन्य महाप्रभु की और शिल प्रभुपाद जी की कि हम भी उसी मत में उसी परंपरा में भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। नहीं तो संसार के लोग भगवान की भक्ति क्यों करते हैं, है? गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, और गाते भी है ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। भक्तों हमारी भक्ति ये नहीं है कि हे जगदीश भक्त जनों के संकट दूर करे, तेरा भक्त तेरे सामने खड़ा है और मेरे संकट को मेरे दुख को दूर कर दो। हमारी भक्ति का भाव तो देवी कुंती कहती है कृष्ण देना ही है तो दुख दो। जहां संसार के लोग भगवान से सुख मांगते हैं, परंतु देवी कुंती और गोपियां भगवान से दुख मांगती हैं, दुख दो। यह है भक्ति का उच्च भाव। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं यही सबसे श्रेष्ठ भाव है या कल्पिता। तब मान लो चैतन्य महाप्रभु को तीसरा प्रश्न पूछा जाए, ठीक है कृष्ण ही आराधना करने लायक और गोपियों के भाव में कृष्ण की भक्ति और पूजा करनी चाहिए, परंतु आप ये बताइए कि इस गोपियों के भाव में कृष्ण की भक्ति करने के लिए सबसे बड़ा शास्त्र और प्रमाण क्या है, किस वस्तु से हम जानेंगे कि कृष्ण की भक्ति परफेक्ट है, उच्च है, नीच है, किस वस्तु से? जैसे आप जैसे कोर्ट में कोई जज जजमेंट लेता है तो वो अपनी बुद्धि से नहीं लेता है, वह कानून की किताब होती है, लॉ बुक होती है, उस लॉ बुक की कलम के अनुसार वह जज जजमेंट लेता है। तो भगवान की भक्ति करने के लिए लॉ बुक कौन सी है? चैतन्य महाप्रभु को पूछा गया कृष्ण को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है, तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमापुमर्थो महान श्री चैतन्य मत मिदम। कहते हैं कि यह श्रीमद् भागवत ही सबसे बड़ा प्रमाण है। श्रीमद् भागवत समस्त प्रमाणों का भी प्रमाण है, इसलिए किसी भी सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए भागवत सबसे बड़ा ग्रंथ है। और भक्तों ये भागवत कोई साधारण कथा नहीं है, श्रीमद् भागवत में मात्र कथा ही नहीं, यह भागवत वेदांत सूत्र का भाष्य है। तो श्रीमद् भागवत अनेकों सिद्धांतों से भरा हुआ ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत में मात्र सिद्धांत ही नहीं, अनेकों कथा है और कथा के साथ साथ भगवान की भक्ति का रस भरा गया है। तो हम सबका परम सौभाग्य है यह दिव्य प्रमाण युक्त रस युक्त सिद्धांत सार और कथा युक्त भगवत कथा का प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं। तो आइए प्रस्तुत प्रसंग जो चल रहा है श्रीमद् भागवत का नवम स्कंद, कहते हैं ये नवम स्कंद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भागवत का नवम स्कंद ईशानु कथा के अंतर्गत है। ईश अनुग्रह श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद में भगवान के अनुग्रह का वर्णन हुआ है। भागवत के पूरे नवम स्कंद में भगवान की कृपा का वर्णन किया गया है। आप कहोगे भगवान की कृपा का वर्णन कैसे कहा किया गया? भक्तों इस संसार में जब तक भगवान की कृपा न हो तब तक किसी भी जीव की उन्नति नहीं हो सकती। भगवत गीता के एक प्रसिद्ध श्लोक में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, है ना। और उसी का एक दृश्य प्रभुपाद जी ने बनाया, एक समुन्दर है और उसमें एक भक्त है, दोनों हाथ ऊपर करके डूबते हुए बचना चाहता है और ऊपर से भगवान उसे बचा रहे हैं। यहां पर एक वैसा ही एक फोटो है। तो गीता का यह श्लोक है कि अर्जुन मृत्यु संसार सागरात, इस संसार में सब लोग मृत्यु रूपी संसार में फंसे हुए हैं, जिसमें हम सब लोग फंसे हैं। और श्री प्रभुपाद जी उस श्लोक के परपोट में लिखते हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी तैरना जानता हो, कितना भी अच्छा स्विमिंग जानता हो, परंतु यदि वह महासागर में फंस जाए, है ना, बड़े महासागर में गिर जाए, फंस जाए, तो कितना भी तैरना जानता हो वहां से बच नहीं सकता है ना। ठीक उसी प्रकार भक्तों, हम कितना भी कितने भी गुणवान हो, हमारे जीवन में हमारे पास कितना भी धन हो, सुंदरता हो, और समाज का और संसार का व्यवहार बिल्कुल हाई क्लास रूप से हम निभा रहे हो, लेकिन फिर भी इस संसार रूपी सागर से बचना कठिन है। कितना भी कुशल आदमी क्यों न हो, है ना, संसार के समस्त फील्ड में समस्त चीजों में कितना भी कुशल हो जाए, लेकिन यदि अपनी उन्नति चाहता है तो अपने आप से नहीं कर सकता है। परंतु सागर में डूबे हुए व्यक्ति को बचाने के लिए कोई व्यक्ति हेलीकॉप्टर लेकर आ जाए, तब डूबने वाला व्यक्ति तुरंत बच सकता है। ठीक उसी प्रकार मृत्यु रूपी संसार में हम सब फंसे हुए जीव, यदि भगवान यदि हमको बचाने के लिए आ जाए तब ही हम बच सकते हैं, अन्यथा हमारा उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए इस अनुग्रह, भगवान के अनुग्रह के बिना किसी भी जीव की उन्नति नहीं हो सकती है। और इसी सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने पूरा नवम स्कंद कह दिया, और इस नवम स्कंद में अनेकों कथा के माध्यम से ये साबित किया कि किस प्रकार भगवान की कृपा से अनेकों राजा महाराजाओं का उद्धार हुआ। नहीं तो बताइए, प्रस्तुत प्रसंग जो चल रहा है, महाराज ययाति महाराज अपनी पत्नी की आसक्ति में इतने फंसे हुए थे, इतने फंसे हुए, दो पत्नी थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी जो थी शुक्राचार्य की कन्या थी, शर्मिष्ठा उनके राजा की पुत्री थी, वृषप्रवाह, है ना, कौन से नायक राजा, वृषप्रवाह की कन्या थी, और अपनी पत्नी के साथ 1000 वर्ष तक भोग भोगे। यद्यपि अपनी पत्नी के साथ संग करने में, भोग भोगने में उनका जीवन का लंबा समय बीत गया, यहां तक उनके ससुर के द्वारा श्राप मिल गया कि तुम बूढ़े हो जाओ, परंतु काम वासना इतनी भवक रही थी, अपने पुत्र की जवानी को लेकर महाराज ययाति ने भोग भोगे और अपनी पत्नी में पूर्ण रूप से आसक्त हो चुके। भागवत के तृतीय स्कंद में भगवान कपिल देव कहते हैं कि यह आसक्ति एक ऐसा बंधन है जिसको कोई काट नहीं सकता है। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मानम कवयो विदु। ये आसक्ति जो है, प्रसंगम अजरम पाशम, एक ऐसा पाश है जो अजर है, जिसको कोई जर्जरित नहीं कर सकता, जिसको कोई काट नहीं सकता। यादि महाराज के चरित्र को देखकर यह लग सकता है कि ये आदमी कभी भी नहीं सुधरेगा, चाहे यादि महाराज हो चाहे पुरुलवा महाराज हो, परंतु इतनी इतनी आसक्ति और भोगों में फंसने के बाद भी तुरंत एक झटके में वैराग्य आ जाना, ये भगवान की कृपा नहीं तो और क्या है। तुरंत एक झटके में, हम लोग के जीवन में आसक्ति है तो सोचते हैं आज सिगरेट पीते हैं तो कल 5 ही पिएंगे, धीरे धीरे करके बंद करेंगे। कुछ लोग सोचते हैं आज चाय पीते हैं तो धीरे धीरे करके कम कर देंगे, हम वैष्णव अपराध करते हैं तो धीरे धीरे करके, लोग सोचते हैं धीरे धीरे करके, परंतु इतनी बड़ी आसक्ति में इतने बड़े राजा होकर भी उन्होंने एक ही झटके में छोड़ दिया। इसके पीछे एकमात्र ईश अनुग्रह, भगवान की कृपा, अन्य कुछ नहीं, भगवान की कृपा। और इस बात को महाराज याति ने भी स्वीकार किया है और महाराज पुरुरवा ने भी स्वीकार किया है। बोले मैं तो उर्वशी के मोह में इतना फंस चुका था, इतना फंस चुका था कि संसार का कोई व्यक्ति मेरा उद्धार करने में समर्थ नहीं था। पुरुरवा महाराज ये गीत गाते हैं और इस गीत का वर्णन भगवान श्री कृष्ण भागवत की एकादश स्कंद के 24-25वें अध्याय में करते हैं। एल गीत में पुरुरवा महाराज कहते हैं कि संसार की जो आसक्ति है सबसे पहले आंखों में और कानों से आती है ना। किसी भी लड़की के प्रति आसक्ति, स्त्री के प्रति आसक्ति, किसी वस्तु के प्रति आसक्ति देखने से आती है ना। किसी वस्तु को देखा जाए, फिर आंखों के बाद वह चीज कहां जाती है, बोले वो मन में चली जाती है। मन से भी उसे निकालना, निकाल सकते हैं यदि योग्य गुरु की शरण में चले जाए तो वह गुरु की कृपा से वह आसक्ति मन से निकल सकती है। लेकिन मन को न रखा जाए तो वह आसक्ति मन के बाद फिर बुद्धि में चली जाती है। कोई महात्मा और शुद्ध गुरु की शरण में जाकर उस बुद्धि में गई हुई आसक्ति को भी निकाला जा सकता है, लेकिन बुद्धि के बाद जब वह आसक्ति हृदय में आ जाती है, चित्त में आ जाती है, तब तो कितने भी बड़े गुरु साक्षात ब्रह्मा जी भी मिल जाए वह आसक्ति से मुक्त नहीं हो सकता। ये बात महाराज पुरुरवा एकादश स्कंद में कहते हैं। तब प्रश्न हो सकता है तो फिर महाराज पुरुरवा आसक्ति से मुक्त कैसे हुए? तब इसका उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं ईशानुग्रह, ये मात्र भगवान की अहेतु की कृपा, अकारण कृपा हो गई भगवान की कि महाराज पुरुरवा को वैराग्य हुआ। और यहां पर अकारण कृपा हुई कि महाराज याति को वैराग्य हो गया, उनके जीवन में इनको वैराग्य हुआ। और महाराज याति को वैराग्य जब आया तब उन्होंने क्या किया? संसार के समस्त भोगों से, समस्त वस्तु और व्यक्ति से जब महाराज याति को वैराग्य आया तो सर्वप्रथम सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इसके पूर्व के 3-4 श्लोक में तात्पर्य नहीं है इसलिए ये श्लोक कल नहीं लिए गए, तो मैं आगे से ही प्रारंभ करता हूं। श्री शुक उवाच, 21वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित इति उक्त्वा नाहुशो, नहुष महाराज के वंशज ये ययाति महाराज, इति उक्त्वा इस प्रकार से अपनी पत्नी को कह दिया। अब अपनी पत्नी को क्या कहा, इसके पीछे भी एक रहस्य है। जब याति महाराज को वैराग्य आया तो तुरंत घर छोड़कर निकल नहीं गए। देखिए एक पति को किस प्रकार से अपना कर्तव्य निभाना चाहिए महाराज याति ने बताया। महाराज याति को जब वैराग्य आया तो वो तो पत्नी, संसार, पुत्र सभी आसक्ति से मुक्त हो चुके थे। वो चाहते तो तुरंत सबको छोड़कर चले जाते, लेकिन एक गृहस्थी के लिए, एक गृहस्थ पति के लिए आदर्श स्थापित किया महाराज याति ने। सोचा कि मुझे तो वैराग्य आ गया लेकिन मेरी पत्नी को वैराग्य नहीं आया, और मेरी पत्नी को वैराग्य नहीं आया, मैं यदि घर छोड़कर चला जाऊंगा तो मेरी पत्नी का क्या होगा। देखिए हम भक्तों के लिए भी बहुत सुंदर उपदेश, वे चाहते तो तुरंत घर छोड़कर जाते लेकिन नहीं गए। कई लोगों ने उसकी उंगली भी उठाई होगी कि अभी भी ये घर पर क्यों पड़ा, अपनी पत्नी के पीछे पीछे क्यों घूम रहा, इतना वैराग्य आ जाने के बाद अब पत्नी के साथ रहने की क्या जरूरत। परंतु लोगों की बातों के ऊपर न देखकर महाराज याति ने अपना कर्तव्य निभाया। हम भक्तों को भी इस बातों को ध्यान में रखना चाहिए, भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से कभी कभी पति के अंदर वैराग्य आ जाता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं पति को वैराग्य आ गया तो पत्नी को वैराग्य आ ही गया। हो सकता है पति को वैराग्य आ गया पत्नी को नहीं आया, तो उस समय पति को चाहिए कि अपना वैराग्य अपने अंदर रखे और वैराग्य हृदय में रखकर भगवान की भक्ति करे। परंतु पत्नी को वैराग्य नहीं आया, और पत्नी को जब तक वैराग्य न आए तब तक पत्नी सारी इच्छा पूर्ण कर। आज के भक्त पति क्या करते हैं, खुद को वैराग्य है और खुद घर छोड़कर भाग जाते हैं, प्रचार करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, और पत्नी घर पे अकेले रहती है, रोती है, तड़पती है, और आखिर डाइवर्स हो जाता है, भक्ति में आकर भी डाइवर्स हो जाता है। और दुख के साथ कहना पड़ता है कि आजकल भक्त लोग डाइवर्स लेना शुरू किए हैं। आखिर कारण क्या है, शास्त्र के सिद्धांत को ठीक से समझ नहीं पाते। देखिए ययाति महाराज के चरित्र को, वैराग्य आया लेकिन सोचा कि मेरी पत्नी को वैराग्य नहीं, और जब तक पत्नी को वैराग्य न आए तब तक मैं उसे छोड़कर कैसे जाऊं। हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जब तक मेरी पत्नी मेरे लेवल तक न आ जाए तब तक मैं उसे इतना फोर्स भक्ति का कैसे कर सकता हूं। तब मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, आज के पति को चाहिए कि धीरे धीरे करके अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करते हुए धीरे धीरे करके उसे भक्ति में लाए। नहीं तो वो पत्नी जो है पति से बिल्कुल विरुद्ध धर्म प्रारंभ कर देगी। महाराज यहाति ने अपनी पत्नी के वैराग्य को बढ़ाने के लिए वो भी सुंदर टेक्निक महाराज यहाति बताते हैं। सीधा नहीं कह दिया कि कृष्ण की भक्ति सर्वोच्च है, कृष्ण की भक्ति करना ही सर्वधर्मान परित्यज्य, माम एकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़कर बस कृष्ण की भक्ति करो। नहीं, धीरे धीरे करके अपनी पत्नी को मनाया। एक दिन की बात, महाराज यहाति और उनकी पत्नी देवयानी दोनों एकांत में एक कमरे में बैठे थे, और समय अवसर पाकर महाराज यहाति ने अपनी पत्नी को कहा कि देवी आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, एक स्टोरी सुनाता हूं। उस समय कोई फिल्म थिएटर नहीं होंगे, इसलिए घर पे बैठकर ही उन्होंने एक फिल्म दिखाया, एक पिक्चर दिखाया। तो पत्नी ने, देवयानी ने पूछा, ये कथा किस हीरो हीरोइन की है। यहाति ने कहा, एक बकरे और बकरी की कथा है। और देखो, इस बकरे और बकरी में तुम किसी को भी बिठा सकती हो, वो बकरा मैं भी हो सकता हूं, बकरी तुम भी हो सकती हो, ऐसे डबल मीनिंग में है यहाति महाराज। क्योंकि सीधा पत्नी को कैसे कह दे कि तुरंत सब कुछ छोड़ो और वैराग्य ले लो, धीरे धीरे करके डोज दे रहे हैं, जोर का झटका धीरे से दे रहे हैं। एक बकरे और बकरी की बहुत दिव्य कथा है, और क्या बताऊं, वो बकरा मैं भी हो सकता हूं, बकरी तुम भी हो सकते हैं। और भक्त ये यहाति महाराज जो कथा कर रहे हैं केवल उस बकरे बकरी की नहीं, हम लोग भी बकरे बकरी में आ ही गए, और हमें भी इस कथा में अपने को बकरे के स्थान पर बिठा ही देना चाहिए, बिठा देना चाहिए। कई बार हम लोग सोचते हैं ना, कुछ लोग थिएटर में जाते हैं, फिल्म देखते हैं, और आज तो एक एक टिकट 500-500 हजार रुपया देकर भी फिल्म देखने जाते हैं। क्यों, आखिर है क्या? बहुत बहुत रिसर्च करने के बाद पता चलता है कि जब आदमी थिएटर में फिल्म देखने के लिए जाता है तो फिल्म में जो नायक होता है हीरो, तो हीरो में अपनी प्रशाली उठा देता कि वहां पर जो हीरो चल रहा है वो मैं खुद हूं। वो रोता है तो इसको रोना आ जाता है, वो किसी को मारता है तो यहां वो हिलने लगता है। तो ठीक उसी प्रकार इस बकरे बकरी में भी हमें अपने आप को बिठा देना चाहिए। बोले, प्रिय, एक बकरा था, और बकरा बहुत अच्छा बकरा था, हैंडसम बकरा था। ऐसा आया श्लोक में, आपने सुना ही होगा, कुछ जो साप्ताहिक भक्त हैं उनके लिए मैं सुना रहा हूं, मैं मात्र श्लोक का अनुवाद अपनी लोकल भाषा में कर रहा हूं। बकरा जो था बिल्कुल हैंडसम बकरा था, उन वो बिल्कुल सुंदर उसकी बॉडी थी, मसल्स थे, और काम वासना को करने में बिल्कुल एक्सपर्ट था, किसी भी स्त्री को सुख देने में एक्सपर्ट था। तो एक दिन की बात, ये बकरा, क्वचित वने यहां पर लिखा है, वह बकरा घूम रहा था, हमारे गुरु महाराज कहते हैं जैसे आज की बकरी घूमते हैं कॉलेज में है, गार्डन में, नेशनल पार्क में, प्लेटफॉर्म पर या बस स्टॉप पर जैसे आज के बकरे घूमते थे, वैसे ही वो बकरा घूम रहा था। तो घूमते घूमते उस बकरे ने एक बकरी के चिल्लाने की आवाज सुनी। ये कथा कौन? याति महाराज अपनी पत्नी को सुना रहे। तो बकरा घूम रहा था और एक बकरी की आवाज सुनी, जहां से आवाज आई वहां पर गया तो देखा कि वो बकरी एक खड्डे में फंस गई। तो बकरा ने सबसे पहले अपना बाल सेट किया, थोड़ा सा हीरोगिरी किया और फिर बकरे ने कैसे भी करके उस बकरी को अंदर से बाहर निकाला। और जैसे ही बकरा ने बकरी को अंदर से बाहर निकाला, बकरी बकरे के ऊपर मोहित हो गई और उसी समय खड़े खड़े प्रपोज कर दिया और कह दिया कि आप मेरे से शादी करोगे, मैं आपसे प्रेम कर रही हूं। बकरे ने देखा बकरी दिखने में तो अच्छी और शादी करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब बकरे ने उस बकरी से शादी कर ली। बकरा बकरी दोनों रहने लगे। लेकिन बकरी ने कहा था, बकरी ने बकरे से शादी करने से पहले एक शर्त रखी कि देखो तुम्हें मेरे साथ ही संग करना है, अन्य किसी बकरी के साथ संग किए तो तुम्हें श्राप मिल जाएगा। तो इस प्रकार दोनों का गृहस्थ जीवन बीतने लगा और एक दिन वह बकरा काम वासना से मोहित होकर किसी अन्य बकरी के साथ संग कर दिया और इस देवयानी बकरी को पता चल गया। बकरी को पता चल गया और बकरी अपने पिता के पास चली गई और उनके पिता बहुत बड़े बकरे थे, बहुत सारे बकरे के गुरु थे शुक्राचार्य। वो आए और देखा कि मेरी बेटी को इसने परेशान किया है, मेरी बेटी को दुखी किया है, तो उस बकरे के अंडकोश को ही काट दिया, बूढ़ा कर दिया बकरे को। बकरा चिल्लाने लगा, उस ससुर के चरणों में गिरने लगा। तब उसने कहा इस प्रकार से परितोष बिठा कर ययाति महाराज ने पूरी कथा सुनी। बहुत लंबी कथा है लेकिन कथा सुनते 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 देवयानी का मन कथा में लग गया और ययाति महाराज के इस प्रयास से देवयानी के हृदय में भी वैराग्य आ गया। देवयानी के वैराग्य की कथा इसके बाद कुछ श्लोकों के बाद बताई गई है। ययाति महाराज के कहने पर देवयानी को भी वैराग्य आ गया, वो भी तपस्वी जीवन बिताने लगी। मात्र रोज थोड़ा सा चावल खिचड़ी खा लेती और भगवान के नाम का जाप करती। परंतु ययाति महाराज कहते हैं इति उक्त्वा, इस प्रकार से अपनी पत्नी को कथा सुनाकर और ययाति महाराज ने देखा कि मेरी पत्नी को वैराग्य आ चुका है, ययाति महाराज इसमें सफल हो गए। और वास्तव में ययाति महाराज ने पति बनने का लक्ष्य पूरा किया। इस संसार में पति का कर्तव्य है अपनी पत्नी का पालन कर। पति का अर्थ होता है पाति इति पति। सिद्ध स्वामी कहते हैं पाति इति रक्षति, जो अपनी पत्नी का रक्षण करे उसे पति कहते हैं। और पत्नी का रक्षण दो तरीके से होता है, एक तो पत्नी के शरीर का रक्षण और दूसरा पत्नी के आत्मा का रक्षण। तो पति को चाहिए मात्र अपनी पत्नी के शरीर का ही रक्षण ना करे, मात्र भोजन पानी घर बारी न दे, साथ ही साथ पत्नी के आत्मा का भी रक्षण होना चाहिए। ययाति महाराज ने अपनी पत्नी के आत्मा का रक्षण किया अर्थात अपनी पत्नी को भगवान की भक्ति प्रदान की। प्रत्येक पति का कर्तव्य है अपनी पत्नी को भगवान की सेवा में लगाए। वो प्रसिद्ध श्लोक आप सब जानते हैं, भगवान ऋषभदेव अपने 100 पुत्र को कहते हैं गुरु न सस्यात् जननी न सस्यात् पति न तत्स्यात्। वह पति पति नहीं है जो अपनी पत्नी को न मोचयेत समुपेत मृत्युम सम उपेत्य सम्यक रूपेण उपेत्य, जो सहसा मृत्यु सामने आ चुकी है अपने मस्तक पर मंडराने वाली मृत्यु से जो बचा न सके, अर्थात जो अपनी पत्नी का उद्धार न कर सके, जो अपनी पत्नी को भक्ति न दे सके, वो पति पति नहीं है। अतः पति को चाहिए कि कुछ प्लान से, कुछ उपाय से धीरे धीरे करके अपनी पत्नी को भगवत सेवा में, भगवत भक्ति में लगाए, जैसे महाराज याति ने अपनी पत्नी को लगा दिया। और जैसे उनकी पत्नी भक्ति में लग गई, तुरंत आगे क्या किया, कहते हैं इति उक्त्वा नाहुशो जायाम तदीयम पूर्वे वयः दत्वा। अपनी पत्नी को कथा सुनाई, वैराग्य उत्पन्न हुआ, और फिर अपने पुत्र से, उनके चार पुत्र थे और पुरु महाराज से उन्होंने जवानी मांगी, अपने पुत्र को जवानी वापस लौटा दी, और स्वाम जरसम तस्माद, और याति महाराज ने खुद बुढ़ापा ले लिया, जवानी अपने पुत्र को दे दी और बुढ़ापा स्वीकार कर लिया। इस आधार में कोई व्यक्ति बुढ़ापा स्वीकार करना नहीं चाहता है। याति महाराज ने जानबूझकर बुढ़ापा क्यों स्वीकार किया, सुखदेव गोस्वामी कहते विगत प्रिय, क्योंकि याति महाराज समस्त तृष्णा से, समस्त स्प्रिहा से, समस्त इच्छाओं से मुक्त हो चुके थे। विगत स्प्रिय, समस्त इच्छा से मुक्त हो चुके, अतः उन्होंने बुढ़ापा मांग लिया। तो इस प्रकार बुढ़ापा ले लिया याति महाराज ने, और फिर याति महाराज अब देख लिया कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, पत्नी को भी वैराग्य है, मेरे हृदय में वैराग्य। तब याति महाराज अब घर छोड़ने की तैयारी कर लिए, परंतु घर छोड़ने से पहले याति महाराज ने बहुत अच्छा काम किया, जो आज के समस्त पिताओं को करना चाहिए। पति का कर्तव्य निभाया, अब याति महाराज पिता का कर्तव्य निभा रहे हैं। याति महाराज ने अपना जो राज्य था, वह राज्य अपने चारों पुत्रों को बांट दिया। यहां पर एक सिद्धांत स्थापित होता है कि पिता की मृत्यु आने से पहले अपने बच्चों को अपनी भूमि का, जमीन का, या अपने जायदाद का बंटवारा कर देना चाहिए। ये पिता का कर्तव्य है, क्योंकि यदि बंटवारा न करे और पिता चले जाए तो बच्चे आपस में झगड़ा करेंगे, लड़ेंगे, और वह झगड़ा करने का दोष पूर्ण रूप से पिता के ऊपर आएगा। तो एक पिता का कर्तव्य है कि वह मृत्यु से पहले अपने बच्चों का बंटवारा करे, अपने संपत्ति का बंटवारा करे। तो आइए, महाराज याति अपने संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं। किस प्रकार कहते हैं, दक्षिण पूर्वस्याम दिशि द्रुह्यम। द्रुह्यु नाम का जो पुत्र था, उसको दक्षिण दिशा का राजा बना दिया। दक्षिण दिशा में एक छोटा सा गांव था, उसका राजा बना दिया। आगे कहते हैं, यदुम प्रतिचक्षा, क्षमा कीजिए, द्रुह्यु को पूर्व दिशा का राजा बनाया, यदु महाराज को दक्षिण दिशा का राजा बनाया, और पूर्वसु को उत्तर दिशा का राजा बनाया। उत्तर, दक्षिण और पूर्व, ये तीनों दिशा में छोटे छोटे राज्य के राजा को राजा निर्माण कर दिया। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पुरु नामक जो सबसे छोटा पुत्र था, जिस पुत्र ने ययाति महाराज को अपनी जवानी दे दी थी, उसके ऊपर ययाति महाराज बड़े प्रसन्न थे। इसलिए श्लोक में कहते हैं भूमंडलस्य सर्वस्य, बाकी के तीन पुत्र को एक एक गांव दे दिया और राजा बना दिया, परंतु पूरा भूमंडल जो था, महाराज याति ने अपने पुत्र पुरु के नाम पे कर दिया। तब यहां पर और एक सिद्धांत आता है, क्या, एक पिता चाहे तो अपने पुत्र को कम संपत्ति दे सकता है, किसी को ज्यादा, किसी को कुछ नहीं भी दे सकता है। ये पिता की स्वतंत्रता है। आज का कानून भले कुछ भी लिखे और कुछ भी कहे, भागवत का सिद्धांत है कि पिता स्वतंत्र है अपने पुत्र को मन चाही संपत्ति दे। ऐसा नहीं चार पुत्र है तो उनकी पिता की संपत्ति का चार भाग किया जाए, नहीं, पिता अपने पुत्र के गुणों को देखकर संपत्ति दे सकते हैं, किसी को कम, किसी को ज्यादा। और यहां पर यह भी बात आई है, बाकी के तीन पुत्र को एक एक गांव दे दिया, तो वह तीनों पुत्र ने प्रेम से स्वीकार कर लिया, झगड़ा नहीं किया कि पिताजी पूर्व को तो पूरी दुनिया दे रहे हो, दो पांच गांव और भी दे दो हमें। नहीं, पिता ने जो भी संपत्ति दी अन्य पुत्रों ने स्वीकार कर लिया। तब मानो परीक्षित महाराज प्रश्न उठाए कि भूमंडलस्य सर्वस्य पुरुम महत्तम विषाम, पुरु महाराज को पूरे भूमंडल का राजा क्यों बनाया, कारण क्या था? पुरु महाराज को पूरी दुनिया का राजा बनाया, इसके पीछे एक ही कारण, पुरु महाराज ने अपने कार्य से अपने पिता ययाति महाराज को प्रसन्न कर लिया था। भक्त, इस संसार में कोई पुत्र अपने पिता को यदि सेवा से प्रसन्न कर लेता है तो वह पुत्र मन चाह वरदान अपने पिता से मांग सकता है। देखिए, आज के प्रवचन में सबके कर्तव्य का वर्णन हो रहा है, पति का कर्तव्य, पिता का कर्तव्य, अब पुत्र का कर्तव्य सुनिए। एक पुत्र का कर्तव्य है अपने पिता की सेवा करे, अपने पिता के आज्ञा का पालन करे। आज दो तीन महीने से कोई भक्ति में आ जाता है, पिता कुछ कहते हैं तो आज का पुत्र कह देता है, मेरे पिता आप नहीं हो, प्रहलाद ने अपने पिता को पिता नहीं कहा। वास्तव में जिस पिता ने जन्म दिया, जिस पिता ने पालन पोषण किया, वास्तव में ये शरीर पिता की देन है, और उस पिता की आदेश को ठुकरा कर माता पिता को दुखी करके संसार में कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। हमने सुना है हमारे गुरु महाराज के मुख से कई वर्ष पहले, इस संसार में यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता को प्रसन्न कर दे तो वह व्यक्ति संसार की चरम सीमा पर पहुंच सकता है। भले माता पिता भक्त न हो, माता पिता अभक्त हो, अरे अभक्त की बात दूर रही, कितने भी भोगी क्यों न हो, कितने भी भोगमय जीवन माता पिता बिता रहे हो, परंतु ऐसे माता पिता को भी यदि पुत्र प्रसन्न कर देता है तो माता पिता के अंतर आत्मा से निकले हुए आशीर्वाद पुत्र के जीवन में सफलता की सीमा पर पहुंचा देते हैं, माता पिता के आशीर्वाद। और माता पिता के हृदय से यदि आर्त शब्द और दुख निकल गया तो वह पुत्र चाहे कितना भी संपत्ति आ जाए, कहीं भी पहुंच जाए, उनके माता पिता दुखी हैं तो वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। धन के ढेर के बीच में खड़ा होगा लेकिन माता पिता दुखी हैं तो वह कभी सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए चाहिए, एक पुत्र का कर्तव्य है अपने माता पिता को प्रसन्न करे। इतिहास साक्षी है भक्तों, अनेकों इतिहास, आप देवव्रत पितामह भीष्म की बात ले लीजिए, पितामह भीष्म के पिता शांतनु है ना, क्या थे, गंगा के साथ विवाह हुआ और गंगा राजा शांतनु को छोड़कर चली गई, तो उनके वीरों में दुखी हो गए, तब इनका मन किसी और स्त्री के ऊपर लग गया, मत्स्यगंधा सत्यवती के ऊपर, और सत्यवती को कह दिया मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। सत्यवती ने कहा मेरे माता पिता से आज्ञा लीजिए, माता पिता के पास गए, कहा कि आप सत्यवती का हाथ मेरे हाथ में लीजिए, मैं शादी करना चाहता हूं। तब सत्यवती के माता पिता ने शर्त रखी, बोले शादी तो कराएंगे लेकिन हमारी शर्त है, क्या शर्त है, बोले सत्यवती के गर्भ से जन्म लेने वाला बालक ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। तब शांतनु ने कहा नहीं नहीं, ऑलरेडी मेरा एक बालक है, एक पुत्र है, और कुरुवंश की परंपरा है कि किसी राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता है, इसलिए देवव्रत के रहते मैं अन्य किसी को राजा नहीं बना सकता हूं। तब उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, परंतु सत्यवती से विवाह नहीं हुआ, उनके मोह में, उनकी आसक्ति में क्योंकि फंस चुके थे, अतः राजा शांतनु रात दिन दुखी रहते थे। अब किसी स्त्री की आसक्ति में फंसकर कोई पिता दुखी रहता है तो क्या ये कोई गुण है? लेकिन फिर भी देखिए, देवव्रत है, उनके पुत्र देवव्रत ने अपने पिता की इस बात को जान लिया कि मेरे पिता दुखी क्यों है, और पिता को प्रसन्न करने के लिए देवव्रत गए, अपने पिता के लिए हाथ मांगने के लिए, बोले तुम अपनी बेटी का हाथ क्यों मेरे पिता के हाथ में नहीं देते हो, मेरे पिता में क्या कमी है, पूरे भारत के, पूरी दुनिया के राजा है, तब बोले कमी तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारी शर्त है कि सत्यवती का पुत्र ही राजा बनना चाहिए, और तुम्हारे रहते कैसे राजा बन सकता है। बोले ऐसा ही है तो जाओ, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि आज के बाद मैं हस्तिनापुर का राजा नहीं बनूंगा। बोले तुम्हारी प्रतिज्ञा मान्य है और हम समझते हैं, और तुम कितना भी वचन दे दो, शादी करने के बाद पति की चलती नहीं है। तुम तो प्रतिज्ञा ले लिए देवव्रत, तुम तो प्रतिज्ञा ले लिए, लेकिन शादी हो जाने के बाद तुम्हारी पत्नी आएगी और जीत पकड़ कर बैठेगी कि मेरे पुत्र को ही राजा बनाओ, तो तब पत्नी के सामने तुम्हारी कुछ चलेगी नहीं। तब देवव्रत ने कहा यदि ऐसा ही है तो मैं भीषण प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के बाद मैं नैष्ठिक अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, मैं जीवन में कभी विवाह नहीं करूंगा। अब तो आप अपनी बेटी का हाथ दे दो। जब इस प्रकार से प्रतिज्ञा ली तब जाकर सत्यवती का हाथ दिया, शांतनु का विवाह हुआ। लेकिन जब राजा शांतनु को पता चला कि मुझे सुखी करने के लिए देवव्रत ने दो दो प्रतिज्ञा ले ली और विवाह करना छोड़ दिया, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की प्रतिज्ञा, उस समय राजा शांतनु के हृदय शब्द निकला, बेटा देवव्रत तुम्हारे इस कार्य से मैं बहुत सुखी हूं, और जाओ आज मैं इतना सुखी हूं तुम्हारे कार्य से, बेटा मैं तुझे इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं, जब तक तुम्हारी इच्छा न हो तब तक मृत्यु तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएगी। बाप किसी स्त्री की आसक्ति में फंसा है, लेकिन आशीर्वाद देखिए, इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि एक पुत्र यदि अपने पिता को प्रसन्न कर लेता है तो पिता अपने पुत्र को कुछ भी दे सकता है। और पितामह भीष्म के जीवन में देखा ना आपने, अर्जुन ने पितामह भीष्म के शरीर में बाणों की बौछार कर दी, पूरे शरीर को भेद दिया, और बाणों की शैया पर पितामह भीष्म सो गए, अनेकों दिन तक सोए रहे, लेकिन काल उनके निकट तक नहीं आ पाया। उत्तरायण के दिन पितामह भीष्म ने स्वयं जब इच्छा की कि अब मैं मेरे प्राण छोड़ दूं, क्योंकि कृष्ण सामने खड़े है ना, बहुत सुंदर पितामह भीष्म की स्तुति है, कृष्ण सामने खड़े थे, अनेकों वैष्णव भक्त खड़े थे, और सबको देखते हुए कृष्ण को स्तुति करते हुए अपनी इच्छा से प्राण त्यागे। अब विचार कीजिए भक्तों, यदि राजा शांतनु ने, पिता शांतनु ने पितामह भीष्म को आशीर्वाद न दिया होता, इच्छा मृत्यु का वरदान न दिया होता, तो क्या कृष्ण को स्तुति करते हुए उनका प्राण निकलता? आखिर एन केन प्रकार अपनी पिता के कृपा से ही तो भगवान को देखते हुए प्राण त्यागे ना। तब भक्तों चाहे समझ में आए या न आए, परंतु संतानों के ऊपर माता पिता का आशीर्वाद और कृपा अवश्य आवश्यक है, और यदि माता पिता प्रसन्न हो गए तो अपने पुत्र को ऐसा आशीर्वाद दे सकते हैं जीवन में बहुत आगे निकल सके। आज यही यहां पर यही हम देख रहे हैं ना, याति महाराज ने देखा कि मेरे बेटे पुरु ने मेरे लिए 1000 वर्ष तक जवानी दे दी और खुद बूढ़ा हो गया, उस पर प्रसन्न होकर पूरे भूमंडल का राजा बना दिया, और राजा बनाने के साथ आशीर्वाद दे दिया, बेटा तेरे 3 भाई हैं, भले क्षत्रिय हैं, लेकिन क्षत्रिय होकर भी उनके कुल में कोई राजा नहीं बनेगा, राजा की परंपरा तो तेरे कुल से ही प्रारंभ होगी, आशीर्वाद दे दिया। इसलिए आप देखो कि इस पुरु के वंश में एक से एक राजा हुए, एक से एक राजा। यद्यपि देखा जाए तो यदु के वंश में भगवान का जन्म हुआ, दूसरा पुत्र था यदु, यदु के वंश में भगवान का जन्म हुआ, लेकिन भगवान को भी अपने वश में करने वाले भक्तों का जन्म तो इस ययाति के श्रेष्ठ पुत्र पुरु के वंश में हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने पिता की इच्छा पूर्ण की। एक के बाद एक है, पुरु के प्रथम पुत्र हुए दुष्यंत, उनकी परंपरा में राजा दुष्यंत हुए। दुष्यंत के विषय में क्या कहा जाए, राजा दुष्यंत जंगल में विचरण कर रहे थे और पानी पीने के लिए महर्षि कण्व के आश्रम में गए, और महर्षि कण्व उस समय आश्रम में नहीं थे। एक स्त्री आई और कहा मुझे जल पीना है, तो उस स्त्री जब जल पिला रही थी, राजा दुष्यंत का मन उस स्त्री के ऊपर आ गया, पुरु की परंपरा, भक्तों भागवत का एक सिद्धांत है, यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता को प्रसन्न कर लेता है तो उनकी परंपरा, उनके पुत्र निश्चित भगवान के भक्त होते हैं, निश्चित। फिर चाहे वह नाभाग की कथा हो, आपने सुना ना भागवत के नवम स्कंद के प्रारंभ में, नभग के पुत्र हुए नाभाग और उनके चार भाई थे, चारों भाई ने अपनी संपत्ति का बंटवारा कर लिया, नाभाग को कुछ नहीं दिया। और नाभाग जब गुरुकुल से आए तो तीनों भाइयों ने क्या कहा कि हमने तो संपत्ति का बंटवारा कर लिया और आपके बंटवारे में पिताजी आए, तुम पिताजी को रखो। पिताजी बूढ़े आ गए थे, उनकी सेवा करनी थी, लेकिन फिर भी नाभाग ने अपने पिता साथ में रखा, उनकी सेवा की और पिता का आशीर्वाद हृदय से निकला कि नाभाग के घर पर अम्बरीश महाराज जैसा पुत्र जन्म ले लिया है। महाभागवत जिन्होंने भगवान को वश में कर लिया, जिनकी रक्षा करने के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया। तो भक्तों ये है माता पिता की सेवा करने का फल। इसलिए तो संतों ने जो गाया है, भूलो भले बिजू बधू माँ बाप ने भूल शो नहीं, अगणित छे उपकार एना ए विहे सर शो नहीं है। दो महीने से हाथ में माला क्या आ गई, माँ बाप को भूल गए, नौ नौ महीने तक गर्भ में रखा और असह्य प्रसव वेदना सहन की भूले। जब बुखार आता था तो खुद रात रात को जग जग कर हमारी सेवा करते थे, भूल गए। खुद भूखे रहकर हमारे पेट का भरण पोषण किया, भूल गए। अनेकों प्रकार की सेवा की। जब हम मल मूत्र त्याग देते थे तब माता को बच्चे का मल मूत्र साफ करने में थोड़ी भी घृणा नहीं होती है, और आज बिचारी बूढ़ी माँ थोड़ा सा खांस देती है तो पुत्र क्रोधित हो जाता है, दूर जाकर खांसो। भूल जाते हैं माता पिता के उपकार को। वक्त तो इस संसार में उपकार करने वाले को यदि हम भूल जाते हैं ना, तो उसकी नरक में भी जगह नहीं मिलती। कितना सुंदर चरित्र है, महाराज याति का पुत्र पुरु अपने पिता की इतनी सुंदर सेवा किया, और जिसके परिवार में एक से एक वैष्णव भक्त का जन्म हुआ। इस संसार में हम लोग सोचते हैं हमारे पुत्र राम और लक्ष्मण जैसे हो, परंतु देखो क्या हम दशरथ जैसे हैं? क्या हम भक्त हैं? हम नीतिज्ञ हैं? कहते ना, संतान थी सेवा चाहो, संतान छो सेवा करो, जेऊ करो तेऊ भरो, ये भावना भूल शो नहीं। हम लोग अपने संतान से सेवा चाहते हैं, है ना, मेरा पुत्र सेवा करे, मेरा पुत्र जब बूढ़ा हो जाऊं तो मेरी सेवा करे। क्या हम हमारे बूढ़े माता पिता की सेवा कर रहे हैं? यदि हम सेवा नहीं कर रहे हैं तो हम हमारे संतानों से क्या आशा रख सकते हैं? यही चरित्र यहाँ पर है। पुरु ने अपने पिता ययाति की सेवा की और पिता का आशीर्वाद आ गया, पूरे भूमंडल का राजा बना दिया। इतना ही नहीं, पिता के आशीर्वाद से एक पुत्र का जन्म हुआ। उनकी परंपरा में राजा दुष्यंत, जो मैं कह रहा हूं, जल पी रहे थे, उनका मन उस स्त्री के ऊपर आ गया और दुष्यंत जी ने कहा कि मेरा मन तुम पर आ गया है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, मैं क्षत्रिय हूं, ययाति महाराज का वंशज हूं, बताइए आपकी माता पिता का नाम क्या है? तब शकुंतला ने कहा कि मेरे पिता का नाम है महर्षि कण्व, अर्थात मेरे पिता ब्राह्मण। तुरंत राजा दुष्यंत ने कहा, तुम्हारे पिता महर्षि कण्व हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं और तुम कह रहे हो कि मैं ब्राह्मण हूं। मुझे मेरे पिता के ऊपर, मुझे मेरे सूर्य वंश के ऊपर भरोसा है कि इस वंश में जन्म लेने वाले के पुत्र का मन किसी पराई स्त्री के ऊपर जा ही नहीं सकता। देखिए कितना विश्वास था इस परंपरा पर, अपने पिता पर, अपने पितरों पर। मुझे विश्वास है कि हमारे पिता के खून का स्वभाव संस्कार मेरा मन किसी पराई स्त्री के ऊपर जा नहीं सकता है, मैं क्षत्रिय हूं तो मेरा मन किसी क्षत्रिय कन्या के ऊपर ही जा सकता है। आज मेरा मन तुम्हारे ऊपर आया, तुम ब्राह्मण नहीं तुम क्षत्रिय हो। तुरंत महर्षि कण्व आए और कहा, महाराज बताओ ये किसकी कन्या है? तब महर्षि कण्व ने कहा, ये मेरी नहीं, ये क्षत्रिय की कन्या है। राजा दुष्यंत शकुंतला का यह चरित्र उनकी परंपरा में हुए हैं, राजा भरत और उसी परंपरा में आगे हुए कुरु शांतनु, उसी परंपरा में आगे हुए विचित्र वीर्य राजा पांडु अर्जुन युधिष्ठिर पांडव, ये सारे पुरु महाराज की परंपरा में आए। कितने भी महान महान भक्त थे और सब राजा हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पिता की सेवा की, अपनी सेवा से पिता को प्रसन्न कर लिया। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अपने पिता को प्रसन्न करने के कारण याति महाराज ने अपने पुत्र को पूरे भूमंडल का राजा बना दिया। तो पत्नी को वैराग्य सिखा दिया कि वो अकेली रह सके, पुत्र को बंटवारा कर दिया और जो अच्छा गुणवान पुत्र था पूरे भूमंडल का राजा बना दिया। अब सब वहीवट कर दिया, अब खुद ने क्या किया? तब आज के श्लोक में आया है, अब स्वयं क्या करने जा रहे हैं? तो कहते हैं, आ सेवितम वर्ष पुगान षड वर्गम विषयेषु सह। कहते हैं खुद आ सेवितम, खुद याति महाराज ने वर्ष पुगान हजारों हजारों वर्षों तक षड वर्गम विषयेषु अनेकों विषयों को भोगा। तो भक्तों थोड़ा सा थोड़ी सी व्याख्या, 5 मिनट का समय है तो कर लेते हैं। आ सेवितम, सेवन किया किसका? विषयेषु, विषयों का सेवन किया। महाराज याति ने हजारों वर्षों तक विषयों का सेवन किया। भक्तों विषयों का सेवन जितना हम करें उतना उस विषयों के सेवन की भावना बढ़ती जाती है। इस संसार में कुछ लोग सोचते हैं कि विषय भोग को भोगने से वो भोगने की लालसा कम हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं। महाराज याति ने पूर्व में कहा है कि संसार में विषय भोग जो है अग्नि के समान है, और यदि विषय भोग को भोगोगे तो अग्नि में घी की आहुति देने के समान। इसलिए विषय भोग, विषय भोग की कामना जब उत्पन्न हो तो उस कामना को दबाना चाहिए, नहीं कि उसे पूर्ण करना चाहिए। कामनाओं को दबाओ, मन को मारो, नहीं तो वह मन हम पर हावी हो जाएगा। महाराज याति ने कहा, मैं तो भूमंडल का चक्रवर्ती सम्राट। महाराज याति भूमंडल के दुनिया के राजा थे, और इतना ही नहीं भोग भोगने की सारी शक्ति थी उनमें। न तो हम दुनिया के राजा हैं, और यदि दुनिया हम मिल भी जाए तो उसका भोग भोगने की शक्ति हम में नहीं है। महाराज याति के पास सब कुछ था, और ये सब कुछ होकर भी उस भोग से संतुष्ट नहीं हुए। तो याति महाराज जैसे राजा जब भोगों से संतुष्ट नहीं हुए, तो हम दुनिया के कीड़े मकोड़े जैसे भोगों से कैसे संतुष्ट हो पाए? कभी नहीं। और ये वास्तव में ये विषय जो है, ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं है? ये विषय जो है काल के समान, जड़ेन्द्रिय काहे काल, ये इंद्रिया जो है काल के समान है। विषय जो है हमको पतन कराने के, पतन की ओर लेकर जाते हैं। भक्तों हमारी 5 इंद्रिया है, और 5 इंद्रियों के 5 विषय, और यहां पर 6 विषय को गिनाए गए हैं, षड वर्ग, शब्द रूप रस गंध और स्पर्श, ये 5 वर्ग हैं, और छठा है मन। कहते हैं प्रत्येक विषय मृत्यु का कारण बन जाता है। जैसे आप देखिए चाणक्य पंडित नीति शास्त्र में कहते हैं, जिन जिन लोगों को वैराग्य आया सब सब लोगों ने एक बात तो बताई। कहते हैं कि ये जो हमारी इंद्रियां हैं विषयों की ओर दौड़ रही हैं, और विषयों की ओर दौड़ने वाली इंद्रियां कैसे मृत्यु का कारण बनती है, दृष्टांत देकर कहते हैं। जैसे शब्द, सांप को कोई पकड़ नहीं सकता, सांप की गति बहुत तेज होती है, किसी को दिखता भी नहीं, लेकिन जब मदारी बीन बजाता है ना, तो उस बीन को सुनकर, वो बीन जब सांप सुनता है तो सुनकर सांप उनके पास मजबूर होकर आ जाता है। वो बीन जब बजाते हैं तब सांप उसमें मोहित हो जाता है, वो बाहर आ जाता है और सांप पकड़ने वाला सफेरा उसे पकड़कर टोकरी में बंद कर देता है। मेरा कहने का अर्थ यह है कि सांप को कोई पकड़ नहीं सकता। सांप की उपमा काल के साथ दी गई, जो काल का भी काल होता है, लेकिन बस शब्द के पीछे आसक्त होने के कारण सांप जैसा व्यक्ति भी फंस जाता है। शब्द, मात्र एक शब्द। और दूसरा दृष्टांत कहते हैं स्पर्श। हाथी जो है स्पर्श, स्पर्श की लालसा के कारण फंस जाता है। नहीं तो हाथी जैसे पशु को कोई वश में कर सकता है? गांव के गांव को उजाड़ दे हाथी, मनुष्य की तो क्या बात है, लेकिन इतने बड़े हाथी को 6 फुट का मनुष्य वश में कैसे करता है? कहते हैं हाथी को हथनी के साथ संग करने की बहुत आसक्ति होती है, जिसे स्पर्श कहते हैं, है ना? तो हाथी को स्पर्श करने की आसक्ति, तो हाथी को पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा खड्डा बनाते हैं और उसमें हाथनी का पुतला बनाते हैं। और हाथी सोचता है कि मैं उस हाथनी के पास जाऊंगा, उसका भोग भोगूंगा। वो दौड़कर जैसे भी जाते हैं खड्डे में गिरता है और अनेकों दिनों तक हाथी को भूखा रखा जाता है। और फिर महावत आता है, हाथी को खिलाता है। हाथी सोचता है कि ये तो मेरा पालनहार है, है ना? खिलाता है तो बोले ये तो मुझे भोजन खिलाता है। और अंकुश लेकर फिर उसे उस हाथी को वश में कर लिया जाता है। बस मात्र स्पर्श इंद्रिया के कारण हाथी जो है 6 फुट के आदमी के वश में हो जाता है। तीसरी चीज कहते हैं रूप। आंखों की तन्मात्रा है रूप। आप ठंडी और बारिश की ऋतु में देखेंगे, छोटे छोटे कीट जो होते हैं वो रूप को देखने में बहुत आसक्त होते हैं। वो चाहते हैं जहां पर लाइट हो वहां पर मैं जाऊं, लेकिन वो छोटे छोटे कीट जैसे ही लाइट के पास जाते हैं तुरंत लाइट को स्पर्श करते ही मर जाते हैं। हम तो देखते हैं ना, फोकस के पास, लाइट के पास वो कीट होते हैं। तो हमारे मन में प्रश्न होता है यदि वो वहां जाकर मर जाते हैं तो उसे दूर हो जाना चाहिए ना, लेकिन रूप में इतने आसक्त होते हैं कि लाइट को छोड़ नहीं सकते। और लाइट गर्म होती है तो स्पर्श होते ही मर जाते हैं। यही स्थिति हमारी। आगे दृष्टांत देते हैं रस। मधुमक्खी रस में आसक्त होती है, वो रस को एकत्रित करती है, लेकिन एक दिन मधुआ आता है, आग लगाता है, मधुमक्खी को मारकर रस लेकर चला जाता है। और अंत में है गंध। गंध माने नासिका, हमारी नासिका सूंघना चाहती है। जो कस्तूरी मृग होता है उसे सुगंध आती है और उस सुगंध को ढूंढने के लिए बहुत दौड़ता है। यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, बहुत दौड़ रहा है, यद्यपि वो सुगंध उन्हीं की नाभि से आती है। और जब वो दौड़ता है तो सुगंध और फैलती है, तो वो सोचता है दौड़ने से और सुगंध मिलेगी, बहुत दौड़ता है और दौड़ते दौड़ते ही मर जाता है। तो बोलते हैं इस मृग में मात्र एक इंद्रिया होती है सूंघने की, परंतु उस सूंघने के कारण वो मर जाता है। हाथी में स्पर्श करने की, वो स्पर्श के कारण मर जाता है। कीट में रूप देखने की, रूप के कारण मर जाता है। मक्खी में रस लेने की, मात्र एक रस लेने के कारण मर जाती है। और सांप में शब्द की, मात्र शब्द के कारण वो मर जाता है। लेकिन दुर्भाग्य मनुष्य के पास ये 6 इंद्रिया है। उन लोगों के पास एक एक वस्तु होने पर भी वो मर जाते हैं। हम मनुष्य के पास ये 6 की 6 है, 6 वर्ग, तो हमारा पतन कैसे नहीं हो सकता है? वो लोग एक एक वस्तु में फंसे होने के कारण मरे, हमारे पास 6 हैं और हम लोग 6 के 6 में फंसे हुए हैं। लेकिन भगवान की कृपा हुई कि महाराज याति, इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ही भगवान के भक्त की शरण ग्रहण कर लेता है तो भक्त के उपदेश को सुनकर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं व्यक्ति आसक्ति से मुक्त हो सकता है। तो षडवर्गम विषयेषु सर, अपने इस विषय को छोड़कर क्षणेन मुमुचे निडम। महाराज याति घर को कैसे छोड़े? क्षणेन, 1 सेकंड में त्याग दी। ऐसा नहीं अब मैं 2 साल के बाद घर छोड़ने की इच्छा है, अब देखता हूँ भगवान की क्या इच्छा है। भगवान तो चाहते ही है, परंतु हम लोग छोड़ना नहीं चाहते। जैसे ही वैराग्य आया क्षणेन तुरंत मुमुचे, मुमुचे माने छोड़ दिया निगम अपने घर को, तुरंत अपने घर को छोड़ दिया। तो छोड़ना चाहिए, बिना छोड़े भगवान नहीं मिलते। आज तो सरकार भी सिस्टम बना कर रखी है रिटायर की, है ना। आज सरकार भी रिटायरमेंट देती है, क्यों, अब आप बूढ़े हुए, अब थोड़ा भजन भक्ति करो और भगवान की प्राप्ति करो। लेकिन ये लोग रिटायर होते हैं तो कोई नया धंधा ढूंढ लेते हैं। सरकार धक्का देकर निकालती है, घर पे बच्चे भी धक्का देकर निकालते हैं कि अब तो आप यात्रा करो, भक्ति करो, भजन करो, लेकिन नहीं करते। आचार्यगण कथा सुनाते ना, ऐसे ही एक थे, पूरा जीवन काम किए, धंधा किए, विषय भोग में फंसे, और फिर सरकार ने रिटायर कर दिया, फिर भी धंधा किए, अब तो घर पे बहू और बच्चे भी थक गए। पिता को अब कैसे भी करके कहते थे इस्कोन में जाओ, मंदिर में जाओ। एक दिन इस्कोन की यात्रा थी, कार्तिक में वृंदावन जा रहे थे, बच्चों ने नाम दर्ज कराया, आप हमें मत लेके जाओ लेकिन हमारे पिताजी को लेकर जाओ। पिताजी को कैसे भी करके इस्कोन के भक्त के साथ वृंदावन में भेजा, 10 दिन वृंदावन में रहा। लेकिन जो लोग षड वर्ग विषय भोग में रहते ना, वो वृंदावन में जाकर भी प्रवचन में नहीं बैठते, चाय की लाइन में खड़े रहते हैं, दूर दूर भटकते हैं। 10 दिन के बाद वापस आए, बच्चों ने पूछा कि मेरे पिताजी भक्त बन गए। बोले तेरे पिताजी तो नहीं बने, लेकिन हम लोग और 5 दिन उनके साथ रहते तो हम भी भक्ति छोड़ दिए होते, वो इतना बदमाश है। बहुत मनाते, सरकार ने रिटायर दिया, बच्चों ने रिटायर दिया, लेकिन ये रिटायर लेने का नाम नहीं। कुछ दिन के बाद हमारे इस्कोन से काशी में यात्रा गई। बच्चों ने सोचा वृंदावन में तो वैराग्य नहीं आया, इसको काशी में तो आएगा, हरिश्चंद्र का घाट देखेगा, मणिकणी का घाट, शव को जलते हुए। नाम दर्ज करा दिया, आप मेरे पिताजी को काशी लेकर जाओ। अब पिताजी को काशी लेकर गए, काशी में घुमाए, बोट में बिठाकर मणिकणी का घाट, हरिश्चंद्र के घाट पर लेकर गए, जहां पर अनेकों शव जल रहे थे। और इसने कहा नाव को खड़ा रखो, नाव को खड़ा रखा, उतर गया और उस हरिश्चंद्र के घाट पर जहां शव जल रहे थे वहां जाकर सीरियस होकर बैठ गए। तब हमारे भक्त गए, बोले क्यों, वैराग्य आ रहा है, एक दिन तुम भी इसी प्रकार जल जाओगे, राख हो जाओगे। चुपचाप बैठे, सोच क्या रहे हो, बोलो कितनी माला जप करोगे। भक्त को लगा कि ये सोच रहे हैं कि 16 माला का नियम लू, 25 का लू कि 32 का लू। बोले क्या सोच रहे हो, क्या नियम लेना चाहते हो। सीरियस हो गए थे पूरे बिल्कुल। भक्तों ने कहा कि कुछ तो नियम ले। सारे भक्त गए, बोले आप इतना सोच क्या रहे हो। बोले सोच यही रहा हूं कि रिटायर होने के बाद सीधा यहां पर आकर लकड़े का बिजनेस शुरू किया होता तो, और मैं सोच रहा हूं कि अभी तीनों बेटे को यहां बुला लूं और यहां लकड़े का बिजनेस शुरू कर। तो कुछ लोग होते हैं नहीं लेते हैं रिटायरमेंट, लेकिन यहां पर देखिए क्षणेन मुमुचे निदम, तुरंत क्षण में ही अपने लाखों लाकर राज रजवाड़े, नौकर चाकर, धन संपत्ति, पत्नी पुत्र सब को त्याग दिया। कैसे त्यागा, दृष्टांत देते हैं, जात पक्ष इव द्विज, द्विज का अर्थ होता है पक्षी, है ना, इसी को द्विज कहा जा रहा है, क्योंकि उनका जन्म 2 बार होता है, ज माने जन्म, द्वि माने 2। पक्षी का जन्म 2 बार, एक तो अंडे के रूप में और दूसरा अंडे के बाद बच्चे के रूप में। तो जैसे पक्षी के पंख आने पर अपने घोंसले को छोड़कर, माता पिता को छोड़कर चला जाता है, वैसे तुरंत याति महाराज अपने घर गृहस्थी को छोड़कर चले गए। बहुत सुंदर, आपने देखा होगा जब छोटा सा पक्षी का बच्चा घोंसले में होता है, है ना, उनके माता पिता उनके लिए कितनी सेवा करते हैं, उनके लिए भोजन लाते हैं, खाना पीना लाते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी पंख आ जाती है ना, पंख आने पर वो पूछने नहीं रहता है, तुरंत उसी घोंसले को छोड़कर चला जाता है। तुरंत भाग जाता है। तो आचार्य गण कहते हैं जैसे पक्षी की दो पंख होती हैं, ऐसे जब किसी भक्त को भक्ति आती है तो भक्त की दो पंख क्या है, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य रूपी जब किसी को पंख आ जाती है फिर वह संसार में नहीं फंसता है, वह संसार को छोड़कर चला जाता है। जैसे सुखदेव चले गए, जैसे परीक्षित चले गए, वैसे महात्मा संत की तरह मुझे नहीं। आचार्यों ने बहुत सुंदर लिखा है कि जब ज्ञान और वैराग्य हृदय में भक्ति आ जाए तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पानी बहता भला संत चलता भला। पानी यदि एक जगह पर टिक जाए ना तो वो पानी बिगड़ जाता है, भक्त संत साधु यदि एक जगह पर ही टिक जाए तो बिगड़ जाता है, स्वभाव बिगड़ जाता है कि ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरी जगह है, ये मेरे शिष्य हैं, ये मेरा डोनेशन है, ये मेरा कोटा है, है? इसलिए साधु संतों के लिए एक ही उपदेश, पानी बहता भला संत चलता भला। गुरु महाराज आज ही मैं सुबह सुन रहा था योग, देखिए कि कल रात को दयामूर्ति प्रभु का फोन आया, प्रभु जी आपको इस पर प्रवचन देना है। मेरी कोई तैयारी नहीं थी और मैं रोज सुबह उठकर महाराज जी का प्रवचन सुनता हूँ। मैंने मोबाइल शुरू किया, राधा गोविंद महाराज का प्रवचन शुरू किया तो इसी श्लोक पर प्रवचन था। 56 कथा थी और 56 कथा में भी ये कथा, और उसके अंदर प्रवचन शुरू किया तो यही श्लोक महाराज जी बोले। तो इस श्लोक में के अंत में महाराज जी कहते हैं कि साधु को घूमते रहना चाहिए। साधु यदि एक दिन भी टिक जाए एक स्थान पर, देखिए ये हमारे आचार्य की परंपरा है। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे, उनके रूप सनातन वृंदावन में रहते थे, वृंदावन से कोई भक्त जगन्नाथपुरी में जाते तब चैतन्य महाप्रभु पूछते थे, कहो तहां कैसे रहे रूप सनातन, मेरे रूप और सनातन वहां वृंदावन में कैसे रहते हैं। तब वृंदावन के यात्री महाप्रभु को कहते हैं, क्या बताएं महाप्रभु, आपके रूप और सनातन है अष्ट प्रहर भजन आरी चारी दंड शयन, अष्ट प्रहर भजन 22 घंटा भजन करते हैं, मात्र 2 घंटा भोजन पानी और सोना इत्यादि कार्य करते हैं, और शुष्क रोटी चना चबाए, शुष्क रोटी खा लेते हैं चना खा लेते हैं, और कुछ न मिला तो छाछ पीकर अपना जीवन बिता देते हैं, और इतना ही नहीं एक वृक्ष के नीचे एक दिन सोते हैं, दूसरे दिन दूसरे वृक्ष के नीचे, क्योंकि एक वृक्ष के नीचे 2 दिन सो गए तो न जाने आसक्ति हो जाएगी कि ये मेरा वृक्ष है। इसलिए साधु तो चलता भला, साधु यदि एक वृक्ष के नीचे 2 दिन सो गया तो आसक्ति होगी। गुरु आज सुबह मैंने सुना जैसे भरत हरि और गोपी चंद की हो गई। कितना बड़ा वैराग्य लिया राजा भरत हरि ने, उज्जैन के राजा, और गोपी चंद है वो भी राजा थे, और दोनों राजाओं ने वैराग्य लिया, वैराग्य लेकर कपड़े लाल पहन लिए और वन वन में भटकने लगे, और भटक कर एक वृक्ष के नीचे भरत हरि सोए थे संन्यास का वेश धारण करके, और एक खूंटे के ऊपर अपना झोला टांग दिया और फिर भोजन करने के लिए चले गए कुछ भिक्षा मांगने के लिए। उसी समय गोपीचंद संन्यास का अवसर लेकर आया, उस वृक्ष के नीचे सो गया, और भरत हरि आए तो पूछा कि ये मेरा पेड़ है, बोले नहीं मेरा पेड़ है, ये मेरी खूंटी है, मेरी खूंटी। दोनों का झगड़ा बढ़ा और आपस में हाथापाई करने लगे, दोनों साधु हाथापाई करने लगे। उसी समय एक बुढ़िया वहां से निकली और देखा कि ये साधु झगड़ रहे है ना। आप देखिए कि साधु जो होते हैं पत्नी की आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं, ऑफिस की आसक्ति से, धन की आसक्ति से, सभी आसक्ति को छोड़ देते हैं और मान प्रतिष्ठा में फंस जाते हैं। वो बुढ़िया आई, बोले साधु होकर झगड़ा कर रहे हो है? राजा भरतहरि का नाम सुना, ये दोनों वही थे है? बुढ़िया को नहीं पता था। बोले राजा भरतहरि पूरे संसार के चक्रवर्ती सम्राट, पूरी दुनिया से वैराग्य ले लिए, और राजा गोपीचंद है जवानी में पूरे संसार से वैराग्य ले लिए, और आप साधु बनकर खूंटी में फंसे हो। तब ये दोनों कुवारे बाप थे बाप, हम लोग इतना इतना छोड़कर आए और खूंटी में फंस गए। फंस सकते हैं भक्त बनकर, साधु बनकर भी फंस सकते हैं। अतः साधु को चाहिए क्षणेन मुमुचे निडम, पानी की तरह बहते रहे। और इसी प्रकार राजा भरत के विषय में भी आया है कि वे तुरंत मलवत, जैसे व्यक्ति मल को त्याग कर वह देखने नहीं देता है कि क्या डिजाइन है कैसा है, जैसे ही मल को त्याग कर व्यक्ति वहां से उसे छोड़कर तुरंत चला जाता है, वैसे राजा भरत अपने संसार को त्याग कर चले गए भगवान के चरणों में चले गए, महाराज व्यासि इस प्रकार से संसार को त्याग कर चले गए। हरे कृष्णा हरे हरे राम। एक विशेष निवेदन आप सभी भक्तों के चरणों में हम कर रहे हैं, आप सब भक्त यहाँ पर आए प्रवचन सुने, इसमें कुछ त्रुटि हो तो आप कीजिएगा, और विशेष निवेदन श्री राधा गिरधारी जी के चरण कमलों में हमारा बचपन, हमने तो पाप भी गिरधारी के चरणों में किया और थोड़ी बहुत भक्ति भी इनके चरणों में की, और धीरे धीरे आप सब वैष्णव की कृपा से, गिरधारी जी की कृपा से हम भक्ति में लगे और छोटा मोटा प्रचार शुरू किए, और प्रचार करते करते बोरीवली के छोटे से क्षेत्र में दहीसर में, फिर धीरे धीरे प्रचार को बढ़ाए मीरा रोड, भाईंदर, पंचरत्न, विरार, मलाड, गोरेगांव, धीरे धीरे प्रचार करते गए, और आज आप लोगों के आशीर्वाद से, कृपा से, श्री राधा गिरधारी जी की कृपा से आज हम शिल प्रभु जी का अनुगमन करते हुए भारत से बाहर विदेश में प्रचार करने जा रहे हैं। तो आप आज रात को हमारी फ्लाइट है, हम जा रहे हैं बैंकॉक थाईलैंड, वहाँ पर भागवत कथा है, तो आप सभी भक्तों से निवेदन करते हैं भारत को छोड़कर अन्य जो भूमि है सब माया की भूमि है, माया की नगरी है। प्रभुपाद जी तो एक शुद्ध संत थे कि उनकी पवित्रता से सबको भक्त बना सके, न तो हम में कोई पवित्रता है, न भक्ति है, न साधना है, बस आप सभी भक्तों के चरण में निवेदन करते हैं कि भगवान की कृपा से जो योग बना है विदेश में प्रचार करने का, तो हम विदेश जा रहे हैं, आप सब भक्त आशीर्वाद दीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए हम माया में न फंसे। जैसे हनुमान जी महाराज समुद्र को लांग रहे थे, हम भी समुद्र को पार करके जा रहे हैं, परंतु हनुमान जी महाराज सर्वप्रथम वहाँ के वैष्णवों को, भक्तों को प्रणाम किए कि जब तक मैं वापस न आऊँ तब तक आप खड़े रहिएगा और प्रार्थना कीजिएगा कि मैं वहाँ रावण की लंका में मोहमयी नगरी में फंस न जाऊं। तो आप भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि उस माया नगरी में फंसूं नहीं, बस जाऊं भगवत कथा करके और कृष्ण भक्ति की प्रेरणा देकर हम फिर से यहाँ वापस आए और आप सब भक्तों की आशीर्वाद ग्रहण करें। हरे कृष्ण हरे हरे हरे। और जैसे मैंने आप सबको कहा कि यदि माता पिता प्रसन्न है तो जीवन में सफलता ही सफलता मिलती है, और यदि माता पिता दुखी हैं तो व्यक्ति कितना भी प्रयास करे सफलता नहीं मिलती है। आप सब हमारे माता पिता हो, आप सब हमारे वरिष्ठ हो, इन कुछ दिनों में या कुछ सालों में यदि हमसे कुछ अपराध हो गया हो, कुछ कठोर शब्द निकल गया हो, कुछ गलत व्यवहार, हम मानते हैं हम व्यवहार में और आचरण में बहुत पीछे हैं, तो कुछ गलत व्यवहार हो गया हो, कुछ गलत आचरण हो गया हो, तो बच्चे की गलती समझकर आप क्षमा कीजिएगा और आप प्रसन्न चित होकर मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि जिस कार्य को करने जा रहे हैं इसमें हम सफल हो पाए। हरे कृष्णा। श्री राधा गिरधारी भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद भागवत महापुराण की, हिताय गौर प्रेमानंद।
हरे कृष्ण। खूब खूब धन्यवाद लाल गोविंद। आज हम सब लोग का हृदय कमल की भांति खिल रहा है, क्यों? आज राधा गिरधारी ने हमारी पर असीम कृपा की है कि एक राधा गिरधारी का भक्त पश्चात देश में जाके भगवान का प्रचार करने का प्रयास कर रहा है, और विशेष प्रभुपाद की अंतिम इच्छा थी। प्रभुपाद बार बार कहते थे कि भक्तों को एक स्थान पर नहीं रहना चाहिए, नारद मुनि की दृष्टांत देते, एज है आज लाल गोविंद ने बताया कि मैं यहाँ ही प्रचार, वो अंतिम उसका उद्देश्य, आज मेरा उद्देश्य सही हो रहा है, कि मैं यहाँ दहीसी बोरेवल वीरा रोड में तो प्रचार कर रहा था, मुझे कौन बाहर का मौका दे और भगवान राधा गिरधारी और जगन्नाथ ने असीम कृपा करके उसको पश्चात देश का मौका दिया है और वहाँ उसकी कथा का विशेष आयोजन चल रहा है। स्वीडन से एक मतलब फोन था, मैं लाल गोविंद को मिलना चाहती हूँ और हम दोनों सहेली लाल गोविंद की कथा सुनने के लिए थाईलैंड जाने का प्रयास कर रहे हैं और हो सके तो हम सहेलियों साथ में मिलकर प्रभु जी को स्वीडन बुलाने का प्रयास करते हैं। बोलो श्री जगत गुरु प्रभुपाद की। तो हमारी पर प्रभुपाद की और राधा गिरधारी की असीम कृपा रही है। राधा गिरधारी के आंगन में ही लाल गोविंद खेलता था और आता रहता था और उसका पिताजी और बाबूलाल कहते उसको प्रसाद मत खिलाओ सबको, वो लोग मैच खेल रहे हैं। और छुपके छुपके आके प्रसाद लेके चले जाते, समय समय का काम करता है। जब समय आया तब तक ये कौन ऐसा व्यक्ति है दुनिया में कि धन का त्याग कर सकता है? सबसे ये दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? धन। बिजनेसमैन होते हुए त्याग करके भगवान का भजन में लगे, नहीं कहना चाहिए उसके सामने, पर क्या करूं। और आज यहां इतना भारी उसके पास मौका है, छता मुड़कलता नहीं, मुझे पश्चात देश मौका मिला है मैं जाऊं। तो आप सब लोग एक बार भगवान राधा गिरधारी बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ को प्रार्थना करें और महामंत्र से उसका स्वागत करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की, बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ भगवान की, श्री श्री गौर निताय की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद हरि बोल।